राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सुमन डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू सुमन डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू सुमन डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही विशेष त्योहार बहुत निकट आ रहा है। क्या है? गौर पूर्णिमा। तो बहुत ही विशेष ये उत्सव है और हरे कृष्ण आंदोलन के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव। वैसे जन्माष्टमी है सबसे बड़ा उत्सव, लेकिन गौर पूर्णिमा उससे भी बड़ा उत्सव हरे कृष्ण आंदोलन के लिए, क्योंकि वही भगवान कृष्ण जो 5000 साल पहले आए थे, तो वो संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इस आंदोलन के पिता हैं संकीर्तन के पितरौ। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसके ये पिता हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो आज उस व्यक्ति का जन्म है, मतलब जन्म आ रहा है जो गौर पूर्णिमा, उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने इस हरे कृष्ण आंदोलन को जन्म दिया। हरि बोल। जिसमें हम लोगों का जन्म हुआ। जो लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आते हैं तो उनका एक नया जन्म होता है कि नहीं? तो एक तो शौक्र जन्म होता है ना माता पिता के, है ना, वीर से जो जन्म शौक्र जन्म होता है, और दूसरा जन्म होता है ये आध्यात्मिक जन्म। हरे कृष्ण आंदोलन से जब आप जुड़ते हैं और आपका जीवन बदलता है तो एक नया जन्म होता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन में जिनका जीवन बदला तो उनका ये जन्म है। तो गौर पूर्णिमा जो है उन भगवान का जन्मदिन है जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन को जन्म दिया और जिस आंदोलन ने हम लोगों को जन्म दिया, हमारे जीवन को बदला, है ना। तो हम जो आज कथा सुनेंगे वो चैतन्य भागवत की कथा है, और समय के अनुसार जितना भी समय होगा उसे हम सुनेंगे। और विशेष रूप से हम आज कथा का रस पिएंगे। ये कथा का रस है जो कानों से पिया जाता है, इसलिए आप लोग अपने कानों को खोलिए, है ना। और कानों को खोलने के लिए आँखों को भी खोलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये कथा का जो रस है वो हम सुनेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत तो मध्य खंड का 25वां अध्याय है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। सभी लोगों के नाथ श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। धर्म वेद ब्राह्मण और सन्यासियों के ईश्वर की जय हो। सची माता के गर्भ से प्रकट रत्न की जय हो। करुणा सागर की जय हो। भक्त मंडली के सहित श्री गौरांग देव की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य देव की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। नवद्वीप में सबके प्राण गौर चंद्र ने जो लीलाएं की हैं वही मध्य खंड की कथा है और ये भक्ति रस का भंडार है। क्या है ये? भक्ति रस का भंडार है। जय जय सर्वलोक नाथ गौर चंद्र, जय धर्म वेद विप्र सन्यासी महेंद्र, जय सची गर्भ रत्न करुणा सागर, जय नित्यानंद प्रभु जय विश्वंभर। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। नवदीप में अच्छा प्रभु निरंतर हरि संकीर्तन करते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य को क्षण क्षण में प्रकाशित करते हैं। मतलब कि भक्ति के भाव में तो कीर्तन करते हैं लेकिन कभी कभी भगवान के भाव में आ जाते हैं तो अपना ऐश्वर्य भी प्रकाशित करते हैं। उस समय वे अपना परिचय देते हैं किस रूप में, कि मैं ईश्वर हूं, है ना। तो सामान्यतया भक्ति के भाव में रहते हैं और संकीर्तन करते हैं भगवान, लेकिन कभी भगवान के भाव में आ जाते हैं, ईश्वर के भाव में आ जाते हैं, है? और अपना परिचय देते हैं किस रूप में, ईश्वर के रूप में परिचय देते हैं। अपने ही नाम के आवेश से महाप्रभु नृत्य करते हैं, क्षण में हुंकार करते हैं और क्षण में अट्टहास करते हैं। प्रेम रस में बेहवल हो भूमि पर निरंतर लोटपोट हो जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा वंदित उनका शरीर धूल से भर जाता है। जिनके शरीर की वंदना ब्रह्मा जी करते हैं वो शरीर इसी इसी धूल में भर जाता है। प्रभु के आनंद का अंत नहीं है। भाग्यवान सब लोग नेत्र भरकर दर्शन करते हैं। बाहरी चेतना प्राप्त होने पर प्रभु सब भक्तों को लेकर बैठ जाते हैं। किसी दिन जाकर गंगा के जल में विहार करते हैं, किसी दिन नृत्य करके आंगन में ही बैठ जाते हैं और भक्त जन घर में ही उनको स्नान करा देते हैं। जब तक प्रभु का आनंदमय नृत्य होता रहता है तब तक पुण्यवती दुखी जल ढोती रहती है। एक दुखी है, नाम की स्त्री है। कहां पर है? श्रीवास के घर में। श्रीवास के घर में जो दुखी नाम की स्त्री है वो क्या करती है? पानी भर करके हमेशा लाती रहती है। श्रीवास का जो घर है वो गंगा जी के पास है तो गंगा नदी से पानी भर के हमेशा वो लाती रहती है, ढोती रहती है पानी। वो क्षण भर के लिए सजल नेत्रों से प्रभु का नृत्य देख लेती है, फिर गंगा जल ढो ढोकर लाती है। उसकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहते हैं। तो कभी देख लेती है भगवान का नृत्य और फिर अपने पानी ढोने में लग जाती है। ऐसा वो बार बार करती है। वो गंगा जल से पूर्ण घटों को पंक्ति में सजाकर चारों ओर रख देती है। ये उसकी सेवा है। दिन भर क्या करती है? गंगा जल घड़ों में भर भर करके लाती है। इन्हें देखकर श्री सचिनंदन को बड़ा संतोष था। एक दिन स्वयं प्रभु ने श्रीवास से पूछा, ये गंगा जल नित्य कौन लाता है? देखो, एक तो पानी भर के लाना, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उस पानी को अच्छी तरह से सजा करके रखना। तो पहले तो टंकियां नहीं होती थी, नल नहीं होते थे, है ना, घड़ों में पानी लाते हैं। तो घड़े जो है मतलब अच्छी प्रकार से पंक्ति में सजा के रखना, है ना। श्रीवास का आंगन बहुत बड़ा था तो चारों तरफ जो है घड़ों को पंक्तियों में सजाती थी, गंगा जल के घड़ों को। तो भगवान एक दिन श्रीवास से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ये गंगा जल नित्य कौन लाता है? वो गंगा जल से भरे हुए जो घड़े हैं वो पंक्ति में जब रखे हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो भगवान पूछते हैं, कौन लाता है? श्रीवास बोले, प्रभु दुखी ढोकर लाती है। दुखी ढोकर लाती है। प्रभु बोले, उसको सब लोग सुखी कहा करो। अरे बोल भगवान कहते हैं उसको दुखी मत बोलो, उसको क्या बोलो? सुखी। उसके लिए दुखी नाम कभी योग्य नहीं है। जो इतनी अच्छी सेवा करे है उसका नाम दुखी नहीं हो सकता। मेरा चित्त तो यही कहता है कि वो सब काल में सुखी है, वो कहाँ दुखी है। प्रभु के श्रीमुख से इतनी करुणापूर्ण बात सुनकर भक्तजन प्रेम के सुख में बेहबल होकर के रोने लगे। प्रेम के सुख में भी कोई व्यक्ति रोता है, है ना। सब भक्त रोने लगे प्रभु की आज्ञा से। तब से सब लोग उससे दुखी ना कहकर क्या बोलने लगे, सुखी, सुखी कहने लगे। श्री वास ने तो उसको दासी समझना सर्वथा त्याग दिया, उसको दासी समझना त्याग दिया। प्रेम योग के द्वारा सेवा करने से ही कृष्ण प्राप्ति होती है, केवल सिर मुड़ाने से ही यम के दंड से नहीं बचाया जा सकता है ना। कुल, रूप, धन अथवा विद्या द्वारा कोई परमार्थ लाभ नहीं होता। अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छा रूप है, धन है, विद्या है, कोई परमार्थ प्राप्त नहीं होता है। प्रेम पूर्वक भजन से ही वो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो कुछ तत्व वेद और भागवत कहते हैं वो सब गौर सुंदर साक्षात दिखलाते हैं। दासी होकर भी जो भगवत की कृपा प्राप्त हुई उसे वृथाभिमान करने वालों ने आंखों से देखा तक नहीं। भगवान की ऐसी कृपा मिली दासी होकर के भी उनको, कुल, रूप, धन के कारण वृथाभिमान करने वालों को देखने को भी नहीं मिली। कृपा पाने के तो बाद बहुत दूर है, वो देख भी नहीं सकते हैं भगवान की ऐसी कृपा। श्रीवास के भाग्य की महिमा का क्या वर्णन करूं, जिसके दास दासी तक के ऊपर भगवान की असीमित कृपा है। देखो फिर श्रीवास का क्या कहना है। एते के कारुण्य सुने प्रभुर श्री मुखे, कांदिते लागीला भक्त गण प्रेम सुखे, सबे सुखे बाली लेन प्रभुर आज्ञाए, दासी बुद्धि श्रीवास न करे सर्वथाए, प्रेम जोगे सेवा करी ले से कृष्ण पाई, माथा मुड़ाई ले यम दंड न एड़ाई, कुले रूपे धन वा विद्याए किछु नए, प्रेम योगे भाजी ले से कृष्ण तुष्ट हये, जते के कहे न तत्व वेदे भागवते, सब देखा ये न श्री गौर सुंदर साक्षाते। दासी है जे प्रसाद दुखी रे हाइले, वृथा अभिमान सब तहा न देखिले, कि कहे वे श्रीवासे रे दम भागे रे महिमा, जा रे दास दासी रे प्रसाद न ही सीमा। अब सुनिए एक दिन की घटना है। श्रीवास के घर में भगवान नृत्य कर रहे हैं और श्रीवास आदि भक्तजन सुख से संकीर्तन कर रहे हैं। देव योग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण मरण हो गया। अब देखिए एक बड़ी ये परीक्षा की बात है, है ना, हम लोगों के लिए बड़ी परीक्षा की बात है। भगवान कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और प्रेम सुख का अनुभव कर रहे हैं, है? और श्रीवास के घर में क्या हो गया है, पुत्र का मरण हो गया। ये घर की स्त्रियों ने देखा और रोने लगी। श्रीवास का घर बहुत बड़ा था, पांच भाई, पांच भाइयों का परिवार, फिर उनकी भी पत्नियां, उनके भी बच्चे, और फिर दास हैं, दासी हैं, उनके भी परिवार, उनके भी बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार था, है ना। तो उस समय क्या हुआ, पुत्र का मरण हो गया, उस समय क्या हुआ, क्या हुआ, घर की स्त्रियां रोने लगी, है ना, घर की स्त्रियां रोने लगी। श्री शशि नंदन अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं कि श्रीवास के घर में महाक्रंदन ध्वनि होने लगी। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है। वे बड़े गंभीर भक्त और बड़े तत्व ज्ञानी थे, वे अपन स्वयं ही स्त्रियों को प्रबोध देने लगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीवास बोले, तुम लोग तो सब श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतः रोना बंद कर चित्त को स्थिर करो। देखो अंत समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहां नृत्य कर रहे हैं। विचार करने की बात है, महापापी भी जिनका अंत समय में नाम लेकर के श्री कृष्ण के धाम को चला जाए, ऐसे साक्षात प्रभु यहां पर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और ब्रह्मा, शिव आदि सब दास उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए क्या शोक करना उचित है, ये शोक की बात है या हर्ष, हर्ष की बात है। यदि किसी समय इस बालक जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को तभी कृतार्थ मानूंगा। यदि तुम संसार के इस धर्म को नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर भी धर्म तो है, शोक करना भी तो धर्म है ना, तो भगवान भी शोक करते हैं, है ना। जिस समय सत्यभामा के पिता सत्यादित्य की मृत्यु हो गई, सद्धर्मा ने मार डाला, तो भगवान ने शोक किया। पांच पांडवों के बारे में जब समाचार मिला कि लाक्षागृह की आग से जल गए, हालांकि वो तो बच गए थे, लेकिन सबकी दृष्टि में तो वो मतलब जल गए हैं और शरीर छोड़ चुके हैं, तो भगवान भी शोक करने गए थे ना। तो संसार का धर्म है क्या? शोक करना, है ना। शोक करना तो संसार का धर्म है। तो श्रीवास पंडित क्या कह रहे हैं, यदि तुम संसार के धर्म को नहीं छोड़ सकते हो तो धीरे धीरे रो, हा? और कोई तुम्हारे इस रोने को ना सुन पाए, नहीं तो प्रभु के नित्य सुख में बाधा पहुंचेगी। रोना है, उचित भी है रोना, तो क्या करो, कैसे रो? धीरे धीरे रो। तुम्हारे क्रंदन के कोलाहल को सुनकर यदि प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआया, अभी तो उनको बाहरी ज्ञान नहीं है, है ना, अभी तो कीर्तन के सुख में है। अगर प्रभु को बाहरी ज्ञान हुआया तो मैं आज अवश्य गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। कौन बोले? श्रीवास बोले। श्रीवास के इन वचनों से सब स्त्रियां शांत स्थिर हो गईं, डर गईं। अभी तो और दूर की दूसरी बहुत बड़ी घटना हो, दुर्घटना हो जाएगी, है? तो शांत हो गई और श्रीवास प्रभु संकीर्तन में चले गए। श्रीवास परम आनंद में संकीर्तन करने लगे। देखो, परम आनंद में संकीर्तन करने लगे श्रीवास। पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास अधिक अधिक विशेष होता जा रहा था। श्रीवास पंडित की ऐसी महिमा है, श्री चैतन्य देव के पार्षद के गुणों की यही सीमा है। गौरचंद्र आनंद में नृत्य कर रहे हैं, भक्तों के साथ कुछ समय इस प्रकार बीत गया। धीरे धीरे एक से दूसरे को खबर होते होते समस्त भक्तों ने सुन लिया कि श्रीवास पंडित के पुत्र का देहांत हो गया है। सभी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ, तथापि किसी ने कुछ भी बाहर प्रकट नहीं किया। अंतकाल ऐसा कृत सोनी ले जा रहे नाम, अति महापाता की हो जाए कृष्ण धाम। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, गुण गाये जत्य तार ब्रह्म आदि भृत्य। ये समय जहाँ रे हाय ले पर लोक, ये कि जो आये कार्य ते आरे शोक। कौन काले ऐसे सूर भाग पाए जबे, कृतार्थ करिया आप नारे मानी तबे। यदि वह संसार धर्म नारे संभारिते, विलंबे कांदी है जा रही है ने लय चित्ते। अन्य जेने के होए आख्यान न सुनाए, पाजे ठाकुरे नित्य सुख भंग है। काले रावे सोने यदि प्रभु बाए पाए, तब आज गंगा प्रवेशी मु सर्व थाए। सभी स्थिर हाई लेन श्रीवास वचने, चली लेन श्रीवास प्रभु रे संकीर्तन। परानंद संकीर्तन कराए श्रीवास, पुनः पुनः बाढ़े आरो विशेष उल्लास। ऐसी श्रीनिवास पंडित रे ए मन महिमा, चैतन्य रे पार्षद रे ए गुण सीमा। परंतु श्री गौर सुंदर तो सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं। क्या? सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, है? वे प्रभु स्वयं ही सबसे पूछने लगे हैं, लीला कर रहे हैं, पूछने की लीला कर रहे हैं, सबसे पूछने लगे हैं। आज मेरा चित्त ना जाने कैसा हो रहा है, क्या श्रीवास के घर में कोई दुख तो नहीं आया? श्रीवास पंडित बोले, प्रभु मेरा कौन सा दुख, जिसके घर में आपका ये प्रसन्न मुख है, जिसके घर में आपका प्रसन्न मुख है, है? परंतु वहां जो अन्य महापुरुष थे, उन्होंने पंडित के पुत्र के देहांत होने का वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु ने संभ्रम सहित पूछा, कितनी देर हुई? तो भक्तों ने सुनाया चार पल रात्रि की बात है, परंतु आपके आनंद के भंग हो जाने के भय से श्रीवास ने इसे किसी के निकट प्रकट नहीं किया। उससे परलोकवास हुए अब ढाई प्रहर हो चुके हैं, ढाई प्रहर। अगर एक प्रहर 3 घंटे का माने तो ढाई प्रहर कितना हुआ? 7.5 घंटा। सोचिए 7.5 घंटा हो गया, और 7.5 घंटा से भी ज्यादा समय से कीर्तन चल रहा है। कीर्तन के बीच में पुत्र की मृत्यु हुई थी, है ना, तो 7.5 घंटे से भी ज्यादा कीर्तन चल रहा है। अब आप आज्ञा दें तो उसका अंतिम कार्य शीघ्र किया जाए। श्रीवास जी ने नहीं कहा, किसने कहा? दूसरे भक्तों ने कहा। अब आज्ञा दीजिए तो उसका क्या करें? हाँ, अंतिम संस्कार करें। श्रीवास की अद्भुत अवस्था को सुनकर प्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। फिर प्रभु बोले, ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा? क्या बोले प्रभु? ऐसा संग कैसे छोड़ूंगा? इतना कहकर महाप्रभु रोने लगे। जिन्होंने मेरे प्रेम बस पुत्र शोक को ना जाना, ऐसों का संग मैं कैसे छोड़ूंगा? इतना कहकर प्रभु और अधिक रोने लगे। उनके श्रीमुख से छोड़ने की बात सुनकर सब भक्त मन में सोचने लगे कि ना जाने क्या विपत्ति आने वाली है। छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? और महाप्रभु क्यों छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो संन्यास लेना है ना, उनको संन्यास लेना है, तो ये बात तो उन्होंने किसी को बताई नहीं। जब कह रहे कैसे छोड़ूंगा, तो भक्तों को जो है बड़ा भय हो गया कि कैसी बात कर रहे हैं। उन्हें लगा कि प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे। इस दुख से वे उच्च स्वर से रुदन करने लगे और लंबी श्वास छोड़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि प्रभु स्थिर हो गए हैं, तो वे अंतिम संस्कार के लिए बालक को ले जाने लगे। प्रभु बोले, हे न संग छाड़ी वे के मते, एते बलि महाप्रभु लागी लकांदीते, पुत्र शोक न जाने लजे मोहर प्रेम, हे न सब संग मोहि छाणी मुके मन, एते बलि महाप्रभु कांदे निर्भर, त्याग वाक्य सोने सब चिंते ने अंतर, न जाने की पर माद पाड़ा एक अखन, अन्योन्य चिंता ऐसा कल भक्त गण, गारस्ते छाड़ी है प्रभु करी बे संन्यास, तारे ध्वनि करी कांधे छाड़ी दीर्घ श्वास। उस समय प्रभु ने मृत शरीर शिशु से प्रश्न किया। देखो, वो बच्चा 7.5 घंटे पहले मर चुका है और भगवान उससे प्रश्न कर रहे हैं। ये भगवान का कार्य है, जन्म कर्म जमे दिव्यम। सामान्य व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे तो क्या मृत व्यक्ति उत्तर देगा? नहीं देगा ना, लेकिन भगवान है। भगवान ने उस मृत शिशु से प्रश्न किया, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? तो वो मृत बालक जीवित होकर बोल उठा, प्रभो आपके विधि विधान से भला उसे उलटने की शक्ति किसमें है? कौन बोला? मरा हुआ बालक जीवित हो गया। इस प्रकार मृत पुत्र प्रभु को उत्तर देने लगा। यह परम अद्भुत वार्ता सब भक्त सुनने लगे। बालक फिर कहने लगा, इस देह से जितने दिन का संयोग था उसका सुख भोग लिया, वो संयोग पूरा हो गया तो अब और टिक नहीं सकता हूं। अब मैं कर्म बंधन से मुक्त होकर अन्य लोक के लिए जा रहा हूं। अब कर्म बंधन से मुक्त होकर के कहां जाएगा? अन्य लोग कौन सा है? भगवान का धाम। कर्म बंधन से मुक्त होकर के मैं अन्य लोग को जा रहा हूं। प्रभु कौन किसका बाप है और कौन किसका पुत्र है? सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, अब वो पुत्र जो है पिता नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पंडित, क्योंकि भगवान भी श्रीवास पंडित बोलते हैं ना, है? तो भगवान की भाषा में बोला पंडित के घर में रहने का भाग। अभी वो जो है शरीर की चेतना में नहीं है, देहात्म बुद्धि में नहीं है, देहात्म बुद्धि से ऊपर है, है? तो क्या बोल रहा है? जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था, मेरा भाग्य था, जितने दिन के लिए पंडित के घर में रहने का भाग्य था उतने दिन रहा, अब अन्य लोक को जा रहा हूँ। पार्षदों के सहित आपके श्री चरणों में नमस्कार है, आप मेरा अपराध ना माने। बच्चा बोल रहा है, आप मेरा अपराध ना माने, मुझे बिदाई दें। इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया। ऐसा कौतुक श्री गौरांग ने किया, ये भगवान की कौतुक है। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व वार्ता सुनकर सब भक्तजन आनंद सागर में बह गए। श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया। हरि बोल। और कृष्ण प्रेम के आनंद से सब बेहबल हो गए। कृष्ण प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। परिवार सहित भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके रोने लगे और बोले, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं और प्रभु हैं। हैं या हूं? हूं, प्रार्थना कर रहे हैं, हूं है? हाँ हूं। जन्म जन्म में आप हमारे क्या हूं? हमारे पिता हो, माता हो, पुत्र हो, प्रभु, सब आप ही होइए, बनिए, है ना। आपके चरण हम कभी ना भूलें। हे प्रभु, जहां कहीं भी हमारा जन्म क्यों ना हो, आपके श्री चरणों में ये प्रेम भक्ति बनी रहे। ये है हमारी चिंता, ये चिंता होनी चाहिए। कहीं भी जन्म लें, एक ही चिंता होनी चाहिए, क्या? कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति बनी रहे। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। चार भाई हैं, एक भाई शरीर छोड़ चुके हैं, श्री नलिन शरीर छोड़ चुके हैं, बाकी जो है श्रीवास, श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति, चार भाई हैं। और उच्च स्वर से रुदन करने लगे। कौन उच्च स्वर से रुदन करने लगे? चारों भाई। कृष्ण प्रेम में चारों ओर क्रंदन का कोलाहल छा गया और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम तो संसार के चरित सब जानते हो, संसार के इन सब दुखों से तुम्हारी भला क्या हानि है? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन ही कर लेता है। देखो, मैं और नित्यानंद ये तो तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अपने चित्त में कुछ शोक दुख मत करना। भगवान के मुख से ऐसी करुणापूर्ण वाक्यों को सुनकर चारों ओर भक्त जय जयकार करने लगे। प्रभु सब भक्तों के सहित बालक को लेकर कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे गए। वहां बालक का यथोचित अंतिम संस्कार करके सबने गंगा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब घर के लिए चले आए। प्रभु भी भक्तों के साथ अपने घर को गए। श्रीवास का परिवार सब बेहबल हो गया। ये सब निगूण कथा जो श्रवण करता है, सुन रहे आप लोग, सुनिए बड़े ध्यान से। ये निगूण कथा जो श्रवण करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। श्रीवास के चरणों में मेरा करोड़ करोड़ नमस्कार है, जिनके गौरचंद्र और नित्यानंद जैसे पुत्र हैं। ये सब अद्भुत चरित्र नवदीप में हो रहे थे, तथापि भक्तों के बिना कोई नहीं जानता था। केवल भक्त ही जो है देखते हैं अपनी आंखों के सामने ऐसी लीलाएं। मध्य खंड की सब कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, जैसे ये कथा जिसमें मृत बालक के मुख से तत्व ज्ञान कहलाया गया। सर्वगण सा प्रभु बालक लाइया, चली लेन गंगा तीरे कीर्तन करिया, यथोचित क्रिया करी करी गंगा स्नान, कृष्ण बलि सभी गृह करी लपयान, प्रभु भक्त गण सभी गेला ने जे घर, श्रीवासेर गोष्ठी सब हाईला बिहवल, ये सब ने गूढ़ कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन, श्रीनिवास चरण राहु के नमस्कार, गौर चंद्र नित्यानंद नंदन जहार, ये सब अद्भुत से नवदीप है, तथापि यह भक्त बिने अन्य न जाने। इस प्रकार श्री गौर सुंदर नवदीप निरंतर संकीर्तन के सुख में विहार कर रहे थे। प्रेम रस के आवेश में प्रभु को संसार का स्फुरण नहीं होता था। अन्य सांसारिक बातें तो दूर रहीं, अब विष्णु पूजन तक प्रभु से नहीं बनता है। अब पूजा भी नहीं, कर पाते हैं। तो पूजा की जो विधि विधान होते हैं ना, तो ये प्रारंभ में आवश्यक होते हैं, लेकिन आगे चलकर जब प्रेम हो जाए तो फिर ये पूजा की विधि विधान भी नहीं हो पाते हैं। जैसे प्रभु स्नान करके विष्णु पूजन के लिए बैठते हैं, अब सुनिए बड़े ध्यान से, प्रेम जो है अब पूजा में बाधा डालता है, प्रेम भी जो है पूजा में बाधा डालता है। जैसे प्रभु स्नान करके विष्णु पूजन के लिए बैठते, वैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु धाराएं बहने लगती हैं, जिनसे वस्त्र भीग जाता, अब कैसे पूजा करें? आंसुओं से अगर वस्त्र भीग गया तो वो फिर अशुद्ध माना जाता है, अब पूजा कैसे होगी? देखो प्रभु मंदिर से बाहर आकर गीले वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहनकर विष्णु पूजन करने लगते हैं, पुनः प्रेम आनंद के जल से वो वस्त्र भी भीग जाता है, और पुनः प्रभु बाहर निकलकर अपने शरीर को पहुंचते हैं। इस प्रकार प्रभु वस्त्र ही केवल बदलते रह जाते हैं, पूजा ही नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह को देख करके ही प्रेम के इतने आंसू बहते हैं, पूरा वस्त्र गीला हो जाता है, क्या किया जाए? क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, कैसे पूजा करें? भगवान के अर्चा विग्रह में इतना सौंदर्य है, इतना प्रेम है, तो जो प्रेमी है तो वो जो है भगवान की पूजा नहीं कर सकते, है ना? तो इस प्रकार प्रभु वस्त्र ही केवल बदलते रह जाते, किंतु प्रेम विवश होकर तिल भर भी विष्णु पूजन नहीं कर पाते। विष्णु पूजन नहीं कर पाते, अंत में हार कर गदाधर से कहते हैं, गदाधर से कहते हैं, तुम्हें विष्णु की पूजा करो, मेरा यह भाग्य नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? मेरा भाग्य नहीं है, तुम्हें विष्णु की पूजा करो, है ना? और गदाधर कौन है? राधा रानी है। तो राधा रानी का सब प्रेम तो चुरा लिया, अब राधा रानी है बिल्कुल क्या खाली हो गई है, और गदाधर के रूप में, पुरुष के रूप में है राधा रानी, है तो वे पूजा कर सकती हैं। अब राधा रानी गदाधर के रूप में पूजा कर सकती हैं, कि प्रेम तो सब उन्होंने खाली कर लिया ना चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने। और अब वही कह रहे हैं कृष्ण कि मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं पूजा कर सकूं, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है, तुम पूजा करो। तो गदाधर पूजा करते हैं। इस प्रकार वैकुंठनाथ भक्ति रस में विभोर नवदीप में रात दिन विहार करते हैं। स्नान करे वैसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र दीते, पाहे रहाई या प्रभु से वस्त्र छाणिया, पुनः अन्य वस्त्र परि विष्णु पूजे गिया, पुनः प्रेमानंद जले तीते से बसन, पुनः बाहिर आई अंग कार्य प्रक्षालन, हे मत वस्त्र परिवर्त कार्य मात्र, प्रेम विष्णु पूजी वारे नारे तिल्य मात्र, शेष गदाधर प्रतिबली लेने वाके, तुम विष्णु पूज मोर नाहि के ये भाग्य, हे मत वैकुंठ नाया के भक्ति रसे, विहरे नवद्वीप रात्रि दिवसे। अब सुने एक बहुत सुंदर कथा है। इस प्रकार से गौर सुंदर नवद्वीप में निरंतर संकीर्तन के सुख में विहार कर रहे थे। प्रेम रस के आवेश में प्रभु को संसार का स्फुरण नहीं होता था, अन्य सांसारिक बातें तो दूर रहीं, अब विष्णु पूजन तक प्रभु से नहीं बनता है। अब विष्णु पूजन की बात मतलब सोचना ही मुश्किल है। प्रभु जैसे प्रभु स्नान करके विष्णु पूजन के लिए बैठते, वैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु धाराएं बहने लगती, जिनसे कि वस्त्र भीग जाता। अच्छा हाँ, क्षमा करना, ये तो मैं सुना चुका हूँ। अब सुनिए, एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर प्रभु ने कृपा करने के लिए उनसे भोजन मांगा। सुने सब लोग, शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर प्रभु ने कृपा करने के लिए उनसे भोजन मांगा। बोले, तुम्हारा अन्न खाने की मेरी बड़ी इच्छा है, तुम कुछ भय मत करो, मैं ठीक कह रहा हूं। इस प्रकार महाप्रभु जब बारंबार कहने लगे तो सुनकर शुक्लांबर अनेक विनय करने लगा। वो बोला, मैं तो अधम भिक्षुक हूं, बड़ा ही निंदित पापी हूं। आप स्वयं सनातन धर्म स्वरूप हो, मैं तो पतित हूं, मैं तो एक कीड़े के समान भी नहीं हूं। कहां तो प्रभु आपको मुझ पर अपने श्री चरणों की छाया करनी चाहिए, और कहां मेरे प्रति आप अपनी इतनी बड़ी माया फैला रहे हैं। कौन बोला? शुक्लांबर ब्रह्मचारी, है ना। बहुत निर्धन भिक्षा मांग करके कुछ चावल के टुकड़े हैं वो इकट्ठे करते थे, उसको बनाते थे, और भगवान कह रहे हैं तुम्हारा अन्न खाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है ना। तो वो जो है बहुत विनती कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कहो, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, इस तरह से, है ना। प्रभु बोले, इसे तुम माया मत समझो, सचमुच तुम्हारे हाथ की रसोई पाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। भगवान बोले, तुम शीघ्र ही घर जाकर तैयार करो, आज मैं दोपहर में अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा, जाओ। भगवान बोले, जाओ अपने घर में, दोपहर में आऊंगा, तैयार करो। तथापि शुक्लांबर के मन में भय हुआ और उसने सब भक्तों से उपाय पूछा। भगवान बोले कि मैं दोपहर में आऊंगा तुम्हारे घर, है ना। अब बहुत भय हुआ, अब भक्तों से उपाय पूछा। सभी बोले, तुम क्यों भय करते हो, ईश्वर के लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं, विशेष करके जो जन उनको सर्वभाव से भजते हैं, उनका अन्न तो सदा वे खोजते आए हैं। अपने स्वभाव के कारण उन्होंने स्वयं ही सुदामा से भोजन मांगा, विदुर से भोजन मांग करके खाया, तो कोई नई बात तो है नहीं उनके लिए। विदुर जी भी दास हैं, है ना। तो दुर्योधन के जो है 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के घर है, है ना। सुदामा सुदामा का क्या खाया, चिवड़ा, है ना। तो कोई नई बात तो है नहीं। भक्त से मांग खाना तो प्रभु का स्वभाव है, इसलिए तुम उन्हें भोजन करके खिलाओ। तथापि यदि तुम्हारे मन में भय है तो तुम उनके लिए स्पर्श में रसोई बनाओ। क्या स्पर्श मतलब? बिना, हाँ, बिना हाथ लगाए उनके लिए, बिना हाथ लगाए रसोई बनाओ, ठीक है, बिना हाथ लगाए रसोई बनाओ। ये तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो प्रभु तुम पर ऐसी कृपा कर रहे हैं। ये सुनकर विप्र हर्षित होकर अपने घर आया। शुक्लांबर ने बड़ी सावधानी से स्नान किया, फिर सुगंधित जल गरम किया, उसमें चावल के साथ केला के नवीन फूल मिलाकर पात्र को स्पर्श किए बिना अलग से डाल दिया। बर्तन को नहीं छुआ, ऊपर से डाल दिया। फिर शुक्लांबर आनंद में जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली की धुन बोलने लगा। उसी क्षण महापतिव्रता जगत माता लक्ष्मी देवी ने भक्त के अन्न के प्रति दृष्टिपात किया, और तत्क्षण वो अन्न सब अमृतमय हो गया। लक्ष्मी जी, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु भी स्नान करके उपस्थित हुए। प्रभु के साथ नित्यानंद आदि कुछ भक्त थे। श्री सचिन नंदन ने गीले वस्त्र बदले, भक्त की इच्छा को पूरा करने वाले प्रभु ने अपने आप ही निकाला भोजन। उसने कहा कि आप ही निकालो, सेल्फ सर्विस। कि मैं पतित हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो भगवान ने अपने हाथ से निकाला। और शुक्लांबर को देखकर कौतुकी प्रभु हंसने लगे। शुक्लांबर की कुटिया गंगा जी के सामने थी। प्रभु ने बड़े आनंद से विष्णु भगवान को भोग लगाया। बोला, भोग भी आप ही लगाओ। मैं भोग भी नहीं लगाऊंगा। मैं भोग लगाऊंगा तो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए भोग भी नहीं लगाया। छुआ नहीं उसने, है ना। तो भगवान ने जो है, भगवान चूंकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो विष्णु को भोग लगाया। प्रभु हंसते हुए आनंद से भोजन के लिए बैठ गए। सब सेवक नेत्र भर कर दर्शन करने लगे। ये श्री गौर सुंदर ब्रह्मा आदि को के यज्ञ के भोक्ता हैं, परंतु ध्यान में ही भोग लगाते हैं। ब्रह्मा आदि जो है यज्ञ करते हैं तो ध्यान में ही भोग लगाते हैं, साथ साथ थोड़ी भोग लगे, मंत्र के द्वारा जो है आहुतियाँ डालते हैं, है ना, और ध्यान करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ साक्षात साक्षात भोक्ता के दर्शन उनको भी दुर्लभ हैं। ऐसे वे प्रभु बोले, अपने जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने जन्म से लेकर के आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। इसमें केला के थोड़ का स्वाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बिना स्पर्श की अलग से ही ऐसी सुंदर रसोई तुमने कैसे बना ली। भगवान कहते हैं संगे नित्यानंद आदि आपते का तोजन तीता वस्त्र एडी लेन श्री सची नंदन अपने लाइया अन्न तान इच्छा पाली शुक्लम्बर देखी यहाँ से ने कुतुहली गंगा रे अग्रत घर गंगा रे सम्मुखे विष्णु निवेदन करी लेने बड़े सुखे हसी वसी लेने प्रभु आनंद भोजने नयन भरिया देखे सर्व भृत्य गने ब्रह्मा दे रे यज्ञ भुक्ता जे गौर सुंदर से ध्यान ए मत साक्षात दुष्कर हे ने प्रभु बोले जन्म यावत आमारे ए मन अन्य रे स्वादु ना ही पाई आरे। तुम जैसे जन ही मेरे बंधु हैं, तुम सब लोग ही मेरे अवतार के मूल कारण हो। शुक्लाम्बर के प्रति प्रभु की ऐसी विशेष कृपा को देखकर अन्य सब भक्त आनंद के आंसू बहाने लगे। हरि बोल। देखो कितना भगवान सम्मान देते हैं, है? जो सबसे अधिक पतित है अपने को समझते हैं, सबको अपने को सबसे अधिक पतित समझता है, जो अपने को सबसे अधिक नीच समझता है उसको भगवान सबसे ऊंचा बनाते हैं, है ना। देखिए कैसा, है ना। शुक्लाम्बर के प्रति प्रभु की ऐसी विशेष कृपा को देखकर अन्य सब भक्त आनंद के आंसू बहाने लगे। इस प्रकार प्रभु ने पुनः पुनः आस्वादन करते हुए बड़े आनंदित होकर भोजन किया। जो कृपा एक भिक्षुक शुक्लाम्बर को प्राप्त हुई उसे करोड़पति परंतु पापी ये भक्त लोग देख तो लें, क्या देख सकते हैं, पाने की तो बात बहुत दूर है। जो कृपा शुक्लाम्बर ने प्राप्त की, जो एक भिक्षुक है कि धन जन पांडित्य से श्री चैतन्य देव नहीं प्राप्त होते, भक्ति रस के ही वशीभूत हैं प्रभु, यही चारों वेद गाते हैं। प्रभु प्रेम का भोजन करके बैठे और हंस हंस कर पान खाने लगे। पत्तल को लेकर सेवक लोग आनंद में झगड़ा करने लगे। वो पत्तल ही ऐसी थी जिसको ब्रह्मा शिव शेष भी शेष झुकाते हैं, जिस पत्तल में भगवान ने खाया है, तो भक्तों में क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। उस भिक्षु के घर में कैसा अपूर्व आनंद हुआ, ऐसा कौतुक करते हैं श्री गौर सुंदर। कुछ समय तक श्री कृष्ण कथा की चर्चा करके महाप्रभु ने वहीं विश्राम किया। अब भगवान वहीं पर क्या कर रहे हैं, विश्राम भी कर रहे हैं। मतलब उसके घर में कितना समय भगवान ने दिया, आए खुद प्रसाद मतलब भोग लगाया, फिर वहाँ निकाल निकाल के खाया, फिर कृष्ण से कथा करी और कृष्ण कथा करते करते विश्राम भी किया। भक्तों ने भी वहीं शयन किया। उनमें से एक भक्त को कुछ अद्भुत बात दिखाई दी कि आनंद हाई ले से भिक्षु के रह घरे ए मत कौतु के करे से गौरे सुंदरे कृष्ण कथा प्रसंग करोचन से खाने महाप्रभु करे लसायन भक्त गण करे लेन तथा ईशायन तथे मध्य अद्भुत देखा एक जन। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत अद्भुत घटना है। महाप्रभु का एक सेवक था विजयदास, क्या नाम था, श्री विजयदास। उस महापुरुष को प्रभु के ऐश्वर्य के कुछ प्रकाश का दर्शन हुआ। नवदीप में उसके समान सुंदर लेखक कोई नहीं था। उन दिनों किताब नहीं छपती थी, है उन दिनों हाथ से किताबें लिखी जाती थी, है तो वो मतलब ऐसा व्यक्ति था जो हाथ से किताबें लिखता था, किताबों की नकल करके लिखता था, है ना। कितना परिश्रम सोचिए। अब जैसे मान लीजिए इतनी मोटी किताब है और मैं पूरी किताब हाथ से लिखूं, कितना परिश्रम होगा। एक किताब लिखने में कितना परिश्रम। छपाई में तो क्या है, है? 10 करोड़ किताबें एक बार छप जाती हैं। ऑर्डर दे दिया, हाँ भाई 1 लाख किताबें छाप दो, हाँ 10,000 किताबें छाप दो, है ना। लेकिन दोनों सोचिए एक किताब लिखने में कितना परिश्रम होता था। और सब कागज जो है लूज पेपर होते थे, अलग अलग पन्ने, है ये गत्ता भी नहीं होता था, है कपड़े में बांध करके उनको जो है रखा जाता था। तो उस समय हाथ से लिखने वाले की कितनी आवश्यकता थी, ये सोचिए। जो हाथ से लिखे और साफ साफ लिखे, सुंदर अक्षरों में लिखे, है ना, कितनी आवश्यकता थी ऐसे लेखक की, है ना। और इसमें यह भी था एक कि ऐसे लोग जो है जब काम में लगते थे तो बेरोजगारी की बात नहीं थी। मशीनों से सब काम होता है और लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। तो उसने प्रभु को अनेक पुस्तकें लिख करके दी थी, किताब लिख करके प्रभु को दी, बहुत बड़ी सेवा है। सोचिए किताब लिख करके प्रभु को दी, महाप्रभु को दी, कितनी बड़ी सेवा है। कि कितना मेहनत, कितना परिश्रम एक किताब लिखने में, और एक गलती भी ना हो, कट ना, मतलब कटिंग कटिंग ना हो। और कई किताबें लिख करके दी महाप्रभु को, कितनी सेवा है। अखरिया विजय के नाम से सब उसे पुकारते थे। अखरिया, अखरिया का मतलब अक्षर लिखने वाला, अच्छा अखरिया विजय। उसे उसके हृदय के भाव को ना जानकर लोग उसे भक्तिहीन कहकर दोष दिया करते थे। निद्रा में प्रभु ने अपना एक हाथ उसके शरीर पर रख दिया। कैसे, ऐसे सोते सोते ऐसे करते ना, अपना हाथ जो ऐसे करते हैं, अपनी करवट पलटते हैं, अपना हाथ इधर रखते हैं, तो उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया सोते सोते। तब तो विजय को सब कुछ अत्यंत अपूर्व दिखाई देने लगा। वो श्री हस्त सोने के स्तंभ के सदृश था। वो हाथ जो है महाप्रभु कैसा था, सोने का खंभा, सोने के खंभे जैसा सुडौल था, बड़ा था, रत्न के आभूषणों से परिपूर्ण था। सब उंगलियों के मूल में रत्नमयी दिव्य मुद्रिकाएं थीं। ना जाने कितने करोड़ सूर्य चंद्रमा का तेज उन मणियों में था। हरि बोल। सब लोग सो रहे हैं और भगवान ने अपना हाथ जिसके ऊपर रखा, और हाथ क्यों रखा, अपना हाथ दिया उसको, कि उसने अपने हाथ से किताबें लिखी थी। तो हाथ की सेवा उसने भगवान को अर्पित की, तो भगवान ने अपना हाथ उसको अर्पित कर दिया है। उसे समस्त ब्रह्मांड ज्योतिर्मय दिखाई देने लगा। श्री हस्त के दर्शन कर विजय परम आनंद में डूब गया। विजय ने आवाज देना चाहा कि प्रभु ने अपना हाथ उसके मुख पर रख दिया। अभी तो हाथ ऐसे रखा था उसके ऊपर, अब उस आवाज देना चाहा आनंद में, प्रेम में, खुशी में, तो हाथ कहाँ गया, डरा गया, मतलब चुप। विजय ने आवाज देना चाहा, प्रभु ने अपना हाथ उसके मुख पर रख दिया। प्रभु बोले, जब तक मैं यहां हूं तब तक किसी को ये रहस्य नहीं सुनाना है, जब तक मेरा अवतार है। जब मैं चला जाऊं तो फिर खूब बताओ, जब तक मैं हूं तब तक नहीं बताना। इतना कहकर प्रभु विजय की ओर देखते हुए हंसने लगे। विजय एक बड़ा भारी हुंकार कर उठा। विजय के हुंकार से सब भक्त जागे। वे विजय को पकड़ते, वो पकड़ में नहीं आता है। कुछ समय विजय उन्मत्त रहे, फिर परम आनंद में तन्मय होकर मूर्छित हो गए। हरि बोल। भक्त समझ गए इसे कुछ वैभव का दर्शन हुआ है, और सब रोने लगे। प्रभु सबसे पूछते, बताओ तो क्या बात है। भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सबसे पूछते हैं। अचानक विजय ने बड़ा हुंकार किया, फिर प्रभु बोले, समझ गया ये गंगा का प्रभाव है। विजय का गंगा के प्रति विशेष अनुराग है, अथवा शुक्लाम्बर के ग्रह में कोई देवता का निवास है। भगवान से अगर अपने को छिपाए तो कौन जान पाएगा, अथवा श्री कृष्ण का कोई चमत्कार इसे दिखाई दिया है। भगवान कह रहे हैं, इतना कहकर विजय के शरीर पर अपना हाथ फेर कर उसे सचेत किया, वो मूर्छित हो गया था ना। प्रभु का एक कौतुक देखकर सब वैष्णव हंसने लगे। विजय सचेत होकर उठा तो सही, पर ज्ञान रहित हो गया। 7 दिन तक सारी नदियां में घूमता फिरा, खाना पीना सोना सब छूट गया उसका। 7 दिन तक ऐसे ही घूमता फिरा है? बोलता नहीं किसी से कुछ भी, केवल घूमता रहता। विजय कोई उसके रहस्य को नहीं जान सका। कुछ दिन पश्चात विजय को बाहरी ज्ञान हुआ। शुक्लाम्बर के घर में ऐसे सब कौतुक होते थे। शुक्लाम्बर के भाग का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है। गौरचंद्र ने जिसका अन्न ग्रहण किया, इस प्रकार भाग्यवान शुक्लाम्बर के घर में गौर सुंदर अपनी गोष्ठी सहित विहार करते रहे। शुक्लाम्बर का भोजन और विजय पर कृपा, ये दो लीलाएं, शुक्लाम्बर का भोजन और विजय पर कृपा, ये कथा सुनने मात्र से भक्ति धन प्राप्त होता है। सभारे जिज्ञासे प्रभु की बोले इहारे, अचंभित विजय रे बढ़ता हुंकारे। प्रभु बोले जाने लांग गंगा रे प्रभाव, विजय रे विषय से गंगा ए अनुराग। नए शुक्लाम्बर गृह देवे अधिष्ठान, की वह देखी ले न इहा कृष्ण से प्रमाण। हे ते बलि विजय रे अंगे दिया हस्त, चेतन करी ले हसे वैष्णव समस्त। उठिया ओ विजय हाई न जल प्राय, सप्त दिन भ्रमी ले न सर्वे नदी आए। आहार पानी निद्रा रहे ते देह धर्म, भ्रमए विजय के हो नाए जाने मर्म। कथो देने बाए चेष्टा जानी ला विजय, शुक्लाम्बर गृह हे न सब रंग है। शुक्लाम्बर भाग्य बाली वारे शक्तिकार, गौर चंद्र अन्य परिग्रह कैला जारे। हे मत भाग्यवंत शुक्लाम्बर घरे, गोष्ठी रे सहित गौर सुंदर बिहरी। विजय रे कृपा शुक्लाम्बर न, शुक्लाम्बर भोजन यार श्रवण मात्र मिले भक्ति धन। तो आज हमने कुछ कथा सुनी है, कुछ चरित्र सुना है भगवान गौरांग देव का। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, ज्यादा नहीं लेकिन एक या दो। हाँ जी बोलिए। कहते हैं क्या कहते हैं, आत्मा से ही सच्ची भक्ति, आंसुओं से, हाँ आंसुओं से सच्ची भक्ति होती है। हाँ तो सच्ची भक्ति तो है, सच्ची भक्ति है, लेकिन पूजा की जो विधि है वो है कि आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, अपने शरीर को शुद्ध रखें और वस्त्रों को शुद्ध रखें। तो भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमें, मतलब अगर भगवान की पूजा करनी है तो जो है कोशिश करिए कि शरीर में पसीना भी ना आए। पसीना है, आंसू हैं, ये अशुद्ध ही माने जाते हैं।
अशुद्ध नहीं कहा जाएगा उसको, ये कहा जाएगा जो ये पूजा का बताए ना, पूजा नहीं है, प्रेम के आगे में पूजा नीचे है, प्रेम का ही
दोनों बातें। अभी दोनों बातों को समझना पड़ेगा कि पूजा की जो विधि है, पूजा की जो विधि है वो भी भगवान ने स्थापित की है। और भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे सौभाग्य में पूजा नहीं है, तुम पूजा करो, है ना। तो भगवान की पूजा करना भी बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन बस यही है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें पूजा के विधि विधानों का पालन करना होता है, तो ये भी है। लेकिन भगवान तो जो है, जब भक्त बहुत ऊंचे धरातल पर हो जाता है तो वो पूजा नहीं करता है, लेकिन वो पूजा नहीं करता तो भी वो इसको जो है अपना, वो नहीं मानता है कि मैं ऊंचा उठ गया हूँ। यहाँ पर बड़ी गहराई है कि देखो जो भक्त जो है भगवान के प्रेम में इतने आगे बढ़ जाता है तो उसके अंदर इतनी विनम्र आती है, विनम्रता होती है कि वो सोचता है कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य नहीं है। मतलब यहाँ देखिए कितनी गहराई है भाव की। हालांकि यहाँ ये बहुत ऊंचा धरातल है, लेकिन जो भक्त इतने ऊंचे धरातल पर होता है वो भी अपने को नीचा मानता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं पूजा कर सकूँ। आप समझ रहे हैं? तो इसमें मतलब बड़ी गहराई है। आप एक बात नहीं बोल सकते कि एक ये बात है और दूसरी बात बेकार है, आप नहीं बोल सकते ऐसे। यहाँ पर भगवान जो है मतलब शिक्षा दे रहे हैं तो इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, हालांकि वो बहुत ऊंचे धरातल पर हैं, लेकिन साथ साथ जो भक्त होता है इस तरह से, है ना, आप शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं, है ना, तो बहुत ऊंचे धरातल पर हैं भक्ति के। या अपने वो क्या समझते हैं, मैं सबसे नीच हूँ, मैं सबसे पतित हूँ। तो आप अपने को सबसे नीचा समझें, सबसे पतित समझें, और भगवान आपको अपना भक्त समझें, सबसे पवित्र समझें, वो ज़्यादा अच्छा है? या आप अपने को समझें कि मैं सबसे पवित्र हूँ और भगवान कहें सबसे अशुद्ध है ये? आप समझ रहे हैं? तो भगवान जो है मतलब ये नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को भी जो है इस तरह का भाव हो कि भाई मैं बहुत ऊंचा उठ गया हूँ, अब मेरे लिए पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो प्रेम के धरातल पर आ गया हूँ, मैं पूजा नहीं करूँगा, मैं श्रेष्ठ बन गया हूँ। यहाँ पर ये भाव नहीं है, है ना। तो भावना मतलब क्या है, भक्ति का जो भाव है बहुत गहरा है, समझना बड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ जी। हाँ, ये जो घटना है ये मेरे पास तो इसका समाचार आया, तो एक ये भी एक बड़ी लीला हुई कि जिस समय मेरे पास ये समाचार आया तो मेरे बड़े भाई और मेरी सगी बहन गए हैं परिक्रमा में, तो उस समय वो पहुँचे थे मायापुर में, यहाँ से जो शास्त्रनाथ प्रभु का जो गया ना ग्रुप, तो उनके साथ में गए, तो उन्होंने उस समय फ़ोन किया कि हम पहुँच गए हैं यहाँ और बड़ा अच्छा यहाँ कमरा मिल गया है और बड़ी अच्छी जो है सुविधा मिल गई यहाँ हमें। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने उनसे कहा कि आप मायापुर धाम में जो पहुँच गए हैं ये ऐसा स्थान है जिस स्थान के बारे में ना तो बहुत लोगों ने सुना है और ना इस स्थान को देखा है, आप ऐसे स्थान में आ गए। और जैसे ही फ़ोन मैंने रखा उसी समय चित्तरंजन प्रभु का फ़ोन आया, मायापुर से जो भक्त लोग गए ना यहाँ से इसी मंदिर के, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मतलब मुझे ये सूचना दी कि अभी अगर इंटरनेट में आप देख सकते हो तो देखो, तो पंच तत्व में पांचों जो हैं वो आंसू बहा रहे हैं और बहुत आंसू बह रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो देखो। तो ये भी हमने लिखित रूप दिया है इस लीला को, तो उसमें मतलब एक कितना आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंह से ये निकला कि मायापुर धाम एक ऐसा स्थान है कि अभी संसार के अधिकांश लोगों ने ना देखा है ना सुना है इसको, है ना। उसी समय मायापुर की एक ऐसी लीला का समाचार मुझे मिला जिस लीला को कभी किसी ने ना देखा ना सुना। हरि बोल। तो ये जो मतलब है आश्चर्य है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं अभी तक मिल रही है, हालांकि कुछ चित्र निकले हैं फेसबुक में लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। और वहाँ के जो अधिकारी भक्त हैं, जो सीनियर सन्यासी हैं या गुरु हैं, उनकी ओर से भी कोई व्याख्या नहीं मिली इस लीला की कि मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन है तो आश्चर्य। हाँ जी,
अगर कोई भक्त भगवान की कथाएं पढ़ते हुए गीता या कथाएं भगवान के सामने पढ़ते पढ़ते रोने लगे, उस वक्त वो क्या करेगा, आंसू अगर गिर जाए गीता पे या कथाओं पे?
हाँ, तो कोशिश यही करना चाहिए कि कपड़ा अपने पास रखो जिससे कि मतलब पुस्तक में ना गिरे, ज्यादा अच्छा तो यही है कि कुछ कपड़ा रखो। हाँ, तो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो अगर आंसू गिरेंगे तो इधर गिरेंगे, इधर तो नहीं गिरेंगे, ऐसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। निरंतर आश्री चैतन्य भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
हरी बोल।
नहीं, आपने पहना है कैसे? जैसे पहनाते हैं ना, दोनों साइड
से पहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर इतनी मधुर कथा सुनाई। सब लोग जो है गाँव में तो हो गए, तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हम बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो और कथा है
प्रभु जी, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी बार बार आते रहे, तो हमारे प्रभु की प्रार्थना है। कुछ अनाउंसमेंट है, प्रभु जी खुद जो है प्रभु जी जो है गौ कथा जैसे आपने सुनी थोड़ी सी, तो प्रभु जी 27 फरवरी से 3 मार्च तक जो है प्रभु जी गौ कथा करेंगे यहीं पर। हम यहीं पर जो है प्रभु जी कथा करेंगे 27 तारीख से 3 तारीख तक। तो आप सब लोगों से प्रार्थना, 6 बजे से 9 बजे तक जो कथा होगी 27 से 3 हर रोज, और उसके बाद फुल डिनर प्रसाद होगा। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सब भी आए और सब लोगों को बताएं कि प्रभु जी जो है कथा करने वाले हैं 27 से 3 तक। तो कृपया करके अवश्य हर दिन जो है आप लोग प्रभु जी की जो है सुंदर कथा में जरूर आए।